वाक्यं रसात्मकं काव्यं रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः। रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य, तेन विना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात् रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगाद्भाव दाभास दयो अपि गृहान्ते तत्र रसो यथा शून्यं वासगृहं बलोक्य सायन दत्थाय किञ्चिच्छनैह निन्द्राय झमुपागतस्य सुचिरं निवर्णयं प्रत्युर्मुखम् विश्रब्धं परिच्युब्य जातपुलकम् अवलोक्य गण्डस्थली लजानम्र मुखी प्रियो इण हसता बाला चिरं चुम्बिता अत्र हि संभोगशृङ्गाराख्यो रसः भावो यथा महापात्रराघवानन्दसन्धि विग्रहीकारणं सर्विग्रहिकाणम् यस्यालियनशल्कसिम्नि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलः दृष्टायां धरणी नखे दितिसुताधिसः पदे रोदसी क्रोधे छत्रगणः दसरे दशमुखपाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वम् असावधार्मिकुलम् कस्मैचिदस्मै नमः। अत्र भगवदिस्यारतिभावः रसभासो यथा मधुदिरेभः कुमुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वर्मपनुवर्तमानः श्रृङ्गेण च स्पर्शनिमिलिताक्षि मृगमकण्डुयत् कृष्णसारः। अत्र संभोगशृङ्गारस्य तेयग्विषय त्यग्विष्यद्वाद्रभसाभासः एव मन्यत दोषाः पुनः काव्ये किस्वरूपामैच्यन्ते तत्किमिति। अच्छा तो फिर काव्य का निर्दुष्ट लक्षण क्या है? इस आकांक्षा से अस्मत् स्वसम्मत लक्षण कहते हैं। वाक्यम इति रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रस इति रस के स्वरूप का निराकरण तीसरे परिच्छेद में करेंगे। रसात्मक पद का अर्थ करते हैं रस एव इति सार अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवन मृत आत्मा है वह काव्य वह वाक्य रसात्मक कहलाता है। तेन इति रस के बिना काव्य नहीं होता यह बात पहले कह चुके हैं। रस्यते यहाँ रस का अर्थ है श्रृंगार आदि रस विवक्षित नहीं है अतः रस्यत इति रसः इस यथार्थ के द्वारा जो आस्वादित हो उस सबको रस कहते हैं। इसके रस रसाभास भाव और भावाभास आदि का भी ग्रहण होता है। तत्र इति उनमें से रस का उदाहरण देते हैं। शून्यम इति यह पद्य संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसमें नवविवाहित दंपति का वर्णन है। नवबोढ़ा नायिका वास गृह के शून्य सखी आदि से वियुक्त देखकर पलंग से कुछ थोड़ी सी धीरे धीरे उठी और उठकर निद्रा के मुख से लेटे हुए प्रियतम के मुख को बहुत देर तक बड़े ध्यान से देखती रही कि कहीं जागते तो नहीं है। अनंतर सोता हुआ समझकर विश्वास पूर्वक चुंबन किया परंतु कि उस कपट निंद्रित की कपोल स्थली को हस से रोमांचित देख वह सब नवबधु लज्जा से नम्र मुखी हो गई और हंसते हुए प्रियतम ने अधिक समय तक उसका चुंबन किया। यह नायिका के हृदय में स्थित रति अस्थाई भाव का नायक आलंबन विभाव है और शून्य गृह उद्दीपन विभाव है। किंच छनई हरुत्थाय इससे शंका के साथ उत्सुकता और सुचिरम निर्वरणम से शुद्ध शंका रूप संचारी भाव प्रकट होता है। विश्रब्ध चुंबन अनुभव और लज्जा संचारी भाव है। एवं नायक निष्ठ रीति की नायिका आलम्बन है। हर्ष और हास संचारी का चुंबन तथा अनुभव है। इन विभाव अनुभव और संचारी भावों से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। इस पद्य की रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है। उत्थाय और छनह में संयुक्त महाप्राण वर्णों से श्रुति कटुत्व आ गया है। इन दोनों का पास पास होना और भी दोषदायक है। अनेक पदों में रेफ का संयोग भी श्रुति कटु है। लोक धातु के दो बार और कत्व प्रत्यय के पांच बार अनेक आने से घोर पुनरुक्ति हुई है। इन बातों से वर्णन में कवि ने की दरिद्रता प्रकट होती है। भाव का उदाहरण यस्य इति, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसके सीने मछली का पर के एक किनारे से सारा समुद्र समा गया, मत्स्य अवतार, और जिसकी पीठ पर अखंड ब्रह्मांड आ गया, कुरुम, जिसकी दाढ़ में पृथ्वी छिप गई, बराह और नख से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु लिपट रहा, नृसिंह, जिसके पैर से पृथ्वी और आकाश समा जिसके पैर में पृथ्वी और आकाश समा गए, वामन, और जो क्रोध में क्षत्रिय जाति विलीन हो गए, परशुराम, एवं जिसके बाण से रावण का हाथ में प्रलंबा सुर का कृष्ण जिसके हाथ बाण से रावण का राम, हाथ में प्रलंबा सुर का कृष्ण, ध्यान में जगत का बुद्ध, और खड़ग में अधर्मी को लोगों का लय हुआ, निष्कलंक, उस किसी अलौकिक तेज से मेरा नमस्कार है। यहाँ अलित्य क्रिया के अर्थ में संबंधियों के भेद से कुछ भेद होता है। अत्र इति यहाँ भागवत विषयक रति भाव व्यंग है। देवादि विषयक रति और संचारी भाव यदि व्यंजित हो तो उसे भाव कहते हैं। रसा भाव का उदाहरण मधु इति, जिस समय इंद्र की आज्ञा से बसंत को साथ लेकर कामदेव कैलाश पर भगवान शंकर को मोहित करने पहुंचा था, उस समय इसके प्रभाव से पशु पक्षी भी कितने मुग्ध हो गए थे। यह बात कवि कुलगुरु श्री कालिदास ने भी पद्य में अंकित की है। कामातुर भ्रमर अपनी प्रिया का अनुगमन करता हुआ पुष्य रूप एक पात्र से मधु पुष्प स्वरूप मध्य का पान करने लगा और स्पर्श सुख से निमिलित नयना मृगी को उसका प्रेमी कृष्ण सार मृग सिंह से धीरे धीरे खुजलाने लगा। यहाँ श्रृंगार भास है अनौचित्य से प्रवृत्त और पशु पक्षी विषयक श्रृंगार को श्रृंगार रस कहते हैं। इसी प्रकार अन्य रसों और भावों से के उदाहरण जानना चाहिए। दोषास तस्या अपकर्षका श्रुति दृष्टा पुष्टार्थत्वादय काणत्व खंजत्वादय इव शब्दार्थ द्वारेण देहद्वारेण व्यभिचारी विभावादेह स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वाद इव साक्षात् काव्यास्तयाम् आत्मभूतम् रसमपकर्षयतः काव्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते। एषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। गुणाः किं स्वरूपा इच्छ्यन्ते। काव्य के लक्षण में दोषादि को का निवेश तो माना नहीं है, अतः दोषों के ज्ञान के लिए आकांक्षता उत्पन्न करते हैं। दोषाः पुनः, दोषों का क्या स्वरूप है यह कहते हैं। दोषा इति, काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं। श्रुति दुष्टेति, जैसे कारणत्व खंजत्व आदि दोष शरीर को दूषित करते हुए उसके द्वारा उसमें रहने वाले आत्मा की हीनता सूचित करते हैं। इस प्रकार काव्य के शरीर भूत शब्द से श्रुति दुष्टत्वादि और धर्म अर्थ में अपुष्टार्थ आत्मा की हीनता सूचित करते हैं। अपुष्टार्थ त्वादिक दोष भी पहले शब्द तथा अर्थ को दूषित करके उसके द्वारा काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष हीनता सूचित करते हैं। एवं जैसे मूर्खत्व आदि साक्षात ही किसी के द्वारा नहीं आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं, वैसे ही निर्वेद क्रीडादि व्रीडादिक व्यभिचारी भावों का स्वशब्द वाच्यत्व अपने वाचक पदों के द्वारा पदों से कह देना प्रभृति अनेक दोष काव्य के आत्मा का साक्षात अपकर्ष करते हैं। साक्षात या परंपरा से काव्य के आत्मभूत रस के अपकर्ष से ही दोष काव्य दोष कहते हैं, क्योंकि इनसे काव्य का अपकर्ष बोधित होता है। एसाम इति इन दोषों के विशेष उदाहरण सप्तम परिच्छेद में कहेंगे। गुण इति गुणों का लक्षण करते हैं। उत्कर्ष इति गुण अलंकार और रीतियां काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हैं। जैसे शौर्यादि गुण कटक कुंडलादि अलंकार और अंग रचनादि के मनुष्य के शरीर का उत्कर्ष सूचन करते हुए उसके आत्मा और उत्कर्ष सूचित करते हैं। उसी प्रकार काव्य के भी मधुर्यादि गुण उपमादिक अलंकार और वैदर्भी आदि रीतियां शरीर स्थानीय शब्द और अर्थ का सूचन करते हुए आत्मस्थानीय रस का उत्कर्ष सूचित करते हैं। और जैसे शौर्यादिक मनुष्य के उत्कर्ष कहे जाते हैं, इसी प्रकार माधुर्यादिक काव्य के उत्कर्षक माने जाते हैं। उत्कर्षहेर प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः गुणाः सिर्यादिवत् अलंकाराः कटक कुंडलादिवत् रितयो अवयवौ संस्थान विशेषवत् देहद्वारेणेव शब्दार्थद्वारेणेव तस्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसमुक्तपरकर्षयन्तः काव्यस्योत्कर्षकाः इत्युच्यन्ते। इह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दोऽत्र गुणभिव्यञ्जशब्दार्थयो रूपचर्यते। यतश्च गुणाभिव्यञ्जकाः शब्दा रसस्योत्कर्षकाः इत्युक्तं भवतीति। प्रागेज्योक्तम् एषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्याम। इति श्रीमन्नारायणचरणबिन्द मधुव्रतसाहित्यदर्पणकर्ष कर्णाधारध्वनिप्रह परमाचार्य विशुक्ति रचना रत्नाकराष्टदशा भाषावार विलासिनी भुजंगसंधि संधि विग्रहिक महापात्र श्री विश्वनाथ कविराज कृतौ साहित्य दर्पणे काव्य स्वरूपिणी रूपिणो नाम प्रथम परिच्छेदः। प्रश्न। गुणों को काव्य का उत्कर्ष मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अलंकार सहित काव्य उत्कृष्ट होता है वह सब जब यह कहा जाता है, वैसे ही नहीं कह सकते कि गुण निर्गुण काव्य और की अपेक्षा सगुण काव्य उत्कृष्ट है। कारण यह है कि गुण रस के साथ रहते हैं, अतः जो निर्गुण है वह निरस है
और निरस को आप काव्य ही नहीं मानते हैं, फिर
उनकी उपेक्षा उत्कर्ष कैसा है? सजातियों में जो अधिक गुण विशिष्ट होता है उसे उत्कृष्ट कहते हैं। जो काव्यत्व से ही बहिष्कृत है उसकी अपेक्षा तारतम्य का विचार कैसा, इसके उत्तर देते हुए इति हेति, यद्यपि गुण रस के धर्म है, रस बिना वे नहीं रहते, तथापि वहाँ गुण शब्द लक्षण के गुण से अभिव्यंजक शब्द और अर्थों को बतलाना है, अतः गुण रसोत्कर्ष हेतुत्व इसका यह अर्थ है कि गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ रस के उत्कर्ष होते हैं। इस कारण यहाँ पर अभिप्राय जानना चाहिए कि गुणाभिव्यंजक शब्दों से रहित काव्य की अपेक्षा तत्सहित काव्य उत्कृष्ट है। यह बात सगुणों पद की आलोचना करते हुए पहले कही है। गुण के विशेष उदाहरण अष्टम परिच्छेद में कहेंगे। इति विमलार्थ हर दर्शनीयाम प्रथम परिच्छेदः।